नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का एक उद्बोधन है, मनुष्य में देवत्व का उदय।
जी, ये परम पूज्य गुरुदेव के जो गोड़ विचार हैं, उनको बहुत ही सरल आत्मीय भाषा में समझाता है।
हाँ, और इसका जो मूल लक्ष्य है वो गायत्री परिवार का उद्देश्य भी है कि हर मनुष्य में देवत्व जागे और धरती पर स्वर्ग आए।
बिल्कुल। और जैसा वंदनीय माता जी कहती हैं, ये कोई सिर्फ सपना नहीं है, ये एक संकल्प है।
संकल्प?
हाँ, एक दृढ़ संकल्प जिसे पूरा करने के लिए मतलब हम सबका पुरुषार्थ, सच्ची कोशिश जरूरी है। तो आज हम इसी संकल्प और देवत्व को समझने की कोशिश करेंगे।
माताजी ने बताया कि ये सपना उन्होंने और गुरुजी ने बहुत पहले देखा था।
जी, वर्षों पहले।
कि पृथ्वी पर हम मनुष्यों में देवत्व का उदय हो। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि जब तक एक भी इंसान दुखी है
तब तक उन्हें स्वर्ग भी नहीं जाना।
हाँ, चाहे हजारों जन्म लेने पड़े, यहीं रहेंगे। कितना मतलब गहरा संकल्प है ये।
और यहाँ ये समझना जरूरी है कि देवत्व से उनका मतलब क्या है।
हाँ, क्या है देवत्व?
वो साफ कहती हैं, देवता वो है जो देता है, जिसमें परमार्थ का भाव हो, दूसरों की भलाई की सोच हो।
अच्छा।
और इसके उलट जो दानव प्रवृत्ति है वो सिर्फ लेना जानती है, स्वार्थ में जीना।
तो मतलब दूसरों का दुख महसूस करना और उसे दूर करने की सोचना, वहीं से देवत्व शुरू होता है।
बिल्कुल, वहीं से यही शुरुआत है।
लेकिन ये देवत्व जो सुनने में इतना ऊंचा आदर्श लगता है,
हाँ?
वो हम जैसे साधारण लोगों में कैसे आएगा? माताजी ने कुछ उदाहरण दिए शायद।
हाँ हाँ, बिल्कुल दिए। उन्होंने भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों का जिक्र किया।
अच्छा, ग्वाल बाल।
हाँ, बिल्कुल साधारण थे वो, पर जब कृष्ण की प्रेरणा मिली तो उनका देवत्व जागा और उन्होंने गोवर्धन उठाने जैसे काम में भी अपनी लाठियां लगा दी।
सच में?
जी, इसी तरह भगवान राम के रीच वानर या वो छोटी सी गिलहरी,
हाँ,
शबरी,
हाँ हाँ,
ये सब साधारण थे, पर ईश्वरीय प्रेरणा मिली तो महान काम में सहयोगी बन गए। तो देवत्व पद ये ताकत से नहीं आता।
किससे आता है फिर?
वो भाव से, प्रेरणा से जागता है।
भाव, प्रेरणा और शायद संकल्प शक्ति से भी जुड़ा है ये। आपने फरहाद का जिक्र किया था पहले।
जी हाँ, संकल्प शक्ति पर तो बहुत ही ज्यादा जोर है।
फरहाद का किस्सा सुनाया उन्होंने।
क्या था वो?
कि कैसे उसने सिर्फ अपने संकल्प के बल पर पहाड़ काटकर नहर निकाल दी थी।
अरे वाह।
और खुद गुरुदेव का जीवन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होना, किसानों का लगान माफ करवाना।
हाँ, ये सब संकल्प के ही तो उदाहरण हैं।
माताजी कहती हैं, संकल्प में तो लाखों हाथियों का बल होता है।
गुरुदेव के जीवन से जुड़े कुछ खास आयोजनों का भी जिक्र है शायद, जैसे वो तीन पूर्णाहुतियां।
हाँ बिल्कुल, सूक्ष्मीकरण तपस्या, फिर हीरक जयंती वर्ष और अखंड ज्योति की स्वर्ण जयंती।
ये क्या थी, मतलब सिर्फ व्यक्तिगत साधना? नहीं नहीं, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, इनका उद्देश्य था विश्व कल्याण और जो परिजन है गायत्री परिवार के सदस्य, उनका आत्मिक उत्थान।
अच्छा।
जैसे वो सूक्ष्मीकरण तपस्या थी, वो तो सूक्ष्म जगत में मतलब विचारों की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रयोग था।
और इन सब विचारों को, इस संकल्प को आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम क्या बना?
वो बनी अखंड ज्योति पत्रिका।
हाँ, अखंड ज्योति।
बिल्कुल, उसे तो गुरुदेव के विचारों का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। वंदनीय माता जी ने संकल्प ही लिया था कि इसके 5 लाख सदस्य बनाने हैं।
5 लाख?
क्यों? ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसका स्तर ऊपर उठे।
तो फिर इस पूरे उद्बोधन से हम सबके लिए क्या संदेश है, हमें क्या करना है?
संदेश बिल्कुल सीधा है, अपने अंदर जो देवत्व सोया है उसे जगाइए, पुरुषार्थ करिए मतलब मेहनत करिए,
और
यज्ञों के जरिए, चाहे वो बड़े 108 कुंडिये हो या छोटे 9 कुंडिये, लोगों के मन में देवत्व का भाव जगाइए। भारत भूमि को फिर से यज्ञ भूमि बनाना।
यज्ञ भूमि?
हाँ, जैसे मिट्टी में रत्न छिपे होते हैं ना, वैसे ही समाज में बहुत से लोग हैं जिनमें देवत्व की संभावना है, उन्हें जगाना है।
और समाज में जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनके बारे में भी कुछ कहा?
हाँ बिल्कुल, सामाजिक कुरीतियां, खासकर दहेज प्रथा, उस पर माताजी ने बहुत दुख जाहिर किया है।
दहेज पर?
जी, और संकल्प दिलाया कि न दहेज लेंगे न देंगे। जैसे भगवान राम ने सीता जी का सम्मान किया, वैसा ही सम्मान हर नारी का हो।
सही बात है।
मृत्यु भोज, बाल विवाह, इन कुप्रथाओं को भी खत्म करने का आह्वान है। और एक और बात कही, आंखों का पर्दा।
आंखों का पर्दा मतलब?
मतलब दृष्टि में लिहाज हो, शालीनता हो।
अच्छा।
ये सब करते हुए कई बार लोग शायद अकेला महसूस करें, कोई सहारा।
इसके लिए माताजी ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है।
क्या? कि वो और गुरुजी हर परिजन के साथ हर पल खड़े हैं, उनके हर सुख दुख में साथ है। और ये भी याद दिलाया कि शिष्य अगर कुछ गलत करता है या नीचे गिरता है तो उसका असर गुरु तक जाता है।
हो हो।
इसलिए हमें हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करनी है।
ये बात थोड़ी अलग है क्योंकि आमतौर पे अध्यात्म मतलब लोग समझते हैं संसार छोड़ दो।
बिल्कुल अलग है। वंदनीय माता जी साफ कहते हैं कि अध्यात्म पलायन नहीं है, भागना नहीं है।
तो फिर क्या है?
सच्ची आध्यात्मिकता है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती मेरा परिवार है, इस भाव से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना।
लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए समय, आजकल तो सब कहते हैं बहुत व्यस्त हैं।
हाँ, ये बहाना माताजी कहती नहीं चलेगा।
अच्छा।
जैसे गुरुजी अपने इतने व्यस्त जीवन में से समाज के लिए समय निकालते थे, वैसे ही हमें भी निकालना पड़ेगा। उन्होंने खासकर स्त्रियों से भी कहा कि घर परिवार के साथ लोक सेवा के लिए भी समय निकालें।
तो अगर हम सार देखें तो यही है कि अपने अंदर की दैवीय शक्ति को पहचानो, संकल्प लो और बिना स्वार्थ के समाज और देश के लिए काम करो।
हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि अपनी आत्मिक उन्नति और समाज सेवा ये अलग अलग नहीं है।
अच्छा।
जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल।
वंदनीय माताजी के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता हमारे कर्मों में दिखती है, हमारी सेवा में। यही उनका खास नजरिया है, अंदर का जागरण और बाहर का कर्म दोनों साथ साथ।
यहाँ एक विचार आता है मन में, अगर हर व्यक्ति जैसा माताजी कह रही हैं अपने अंदर के देवत्व को जगाने का सच में ठान ले, संकल्प ले ले,
हाँ,
तो क्या हमारे समाज की, देश की, शायद दुनिया की भी ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ये खुद ही हल नहीं होने लगेंगे? इस पर सोचना चाहिए।
जरूर सोचना चाहिए। और अंत में वंदनीय माताजी का ये भरोसा कि वो और गुरुजी हमेशा साथ हैं, ये हर साधक के लिए, हर काम करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा बल है, प्रेरणा है।
ओम शांति ही।